एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम। मौत की लहरों ने मेरे चारों ओर डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा, मौत की लहरों ने मेरे चारों ओर डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा, यीशु ने जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, यीशु ने जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, नाम खुदा का देखा तो मैंने ये पाया, मौत का फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे नरक ले जाने वाले धागे। देखा तो मैंने ये पाया, मौत का फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे नरक ले जाने वाले धागे। यीशु ने हाथ बढ़ा के ले लिया मुझको बाहों में थाम, यीशु ने हाथ बढ़ा के ले लिया मुझको बाहों में थाम। नाम खुदा का लेता रहूंगा,
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता, हम तेरे वचनों को सुनने और सीखने जा रहे हैं। हमारे मनों को खोल दे, तेरा पवित्र आत्मा से भर दे पिता, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो, वे तेरे वचनों को समझने सके और तेरे राह में चलने सके, इसके लिए उन्हें मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, तेरा सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है यीशु की सेवकाय एवं मृत्यु का समय। इससे पहले हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु का अवतार के विषय में सीखा था। पुराने नियम में परमेश्वर के पुत्र के आने के भविष्यवाणी जो दिए गए थे, उसे हम पाते हैं नया नियम में पूरी तरह से सटीक तौर से पूरा होता है। केवल यीशु मसीह ने ही इन भविष्यवाणियों को पूरा किया है। शास्त्र उसकी वंशावली को अब्राहम में पाते हैं, उसे अब्राहम का पुत्र कहते हैं, मत्ती 1:1, और पौलुस पुष्टि करता है कि अब्राहम और उसके वंश के साथ की गई प्रतिज्ञा मसीह में पूरी हुई, गलातियों 3:16। मसीहाई शीर्षक दाऊद की संतान व्यापक रूप से उस पर लागू किया गया, मत्ती 21:9 देखें। उसे प्रतिज्ञा किए गए मसीहा के रूप में पहचाना गया जो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, प्रेरितों के काम 2:29-30। यीशु का जन्म चमत्कारी था। कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, मत्ती 1:18-23 में हम यह पाते हैं। एक रोमी आदेश उसे बैतलहम भविष्यवाणी किए गए जन्म स्थान तक लाया, लूका 2:4-7 पढ़िए। यीशु के नामों में से एक नाम इमानुएल था, या परमेश्वर हमारे साथ, जो उसके दिव्य मानव स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है एवं परमेश्वर की मानवता के साथ पहचान की व्याख्या करता है, मत्ती 1:23। उसका सामान्य नाम यीशु उसके उद्धार के विशेष कार्य को दर्शाता था, तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम पढ़ते हैं इसे मत्ती 1:21 में। यीशु ने यशाया 61:1-2 में भविष्यवाणी किए गए मसीहा के साथ अपने विशेष कार्य की पहचान की। आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, लूका 4:17-21। हालांकि उसने अपने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन उसके संदेश को आमतौर पर अस्वीकार कर दिया गया। यह हम पाते हैं यूहन्ना 1:11 में और लूका 23:18 में। कुछ को छोड़ करके उसे संसार के उद्धारकर्ता के रूप में मान्यता नहीं मिली, स्वीकृति के बजाय उसे मृत्यु की धमकियां मिली। यह हम पाते हैं यूहन्ना 5:17, 7:19 और 11:53 में। यीशु की 3.5 साल की सेवकाई के अंत में यहूदा इस्करियोती एक चेले ने उसके साथ विश्वासघात किया, यूहन्ना 13:18 और 18:2। केवल चांदी के 30 सिक्कों के लिए मत्ती 26:14-15 में पाते हैं, विरोध करने के बजाय उसने अपने चेलों को उसका बचाव करने के लिए फटकार लगाई। यह हम पाते हैं यूहन्ना 18:4-11 में। हालांकि किसी भी अपराध में निर्दोष उसके पकड़वाए जाने के 24 घंटे से भी कम समय के अंदर उस पर थूका गया, मारा गया, सुनवाई हुई, मृत्यु का आदेश हुआ एवं क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मत्ती 26:67, यूहन्ना 19:1-16 और लूका 23:14-15। सैनिकों ने उसके कपड़ों के लिए दांव लगाया, यूहन्ना 19:23-24। क्रूस पर चढ़ाते समय उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई, यूहन्ना 19:32-33 में हम यह पाते हैं। और उसकी मृत्यु के बाद सैनिकों ने बर्छे से उसका पंजर छिद्रित किया, यूहन्ना 19:34-37। मसीह के अनुयायियों ने उसकी मृत्यु को पापियों को लाभ पहुंचाने के लिए एकमात्र बलिदान माना। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, रोमियो 5:8। प्रेम में चलो, उसने लिखा, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यह हम पाते हैं इफिसियों 5:2 में। आइए अब हम उसकी सेवकाई एवं मृत्यु का समय के विषय सीखें। बाइबल यह प्रकट करती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर समय पूरा होने पर भेजा, गलातियों 4:4। जब मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो उसने घोषणा की, समय पूरा हुआ है, मरकुस 1:15। समय के इन संदर्भों से संकेत मिलता है कि उद्धारकर्ता का विशेष कार्य सावधानी पूर्वक भविष्यवाणी की योजना की अनुरूपता में आगे बढ़ा। 5 सदी से भी अधिक समय पूर्व दानियल के माध्यम से परमेश्वर ने मसीह की सेवकाई की शुरुआत एवं उसकी मृत्यु के सटीक समय की भविष्यवाणी की थी। बाबुल में इसराइल की बंधुआई के 70 वर्षों के करीब परमेश्वर ने दानियल को बताया कि उसने यहूदियों व यरूशलेम शहर के लिए 70 सप्ताह की परख अवधि निर्धारित की है। इस दौरान पश्चाताप करने और स्वयं को मसीहा के आने के लिए तैयार करके यहूदी राष्ट्र को उनके लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना था। दानियल ने इस अवधि को चिन्हित करते हुए अधर्म का प्रायश्चित और योग योग की धार्मिकता लाने के बारे में भी लिखा। इन मसीहाई गतिविधियों से संकेत मिलता है कि उद्धारकर्ता को इस समय के भीतर आना था। देखिए दानियल 9:24 में दानियल की भविष्यवाणी ने निर्दिष्ट किया कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा निकलने के बाद 7 सप्ताह और 62 सप्ताह के बीतने पर या कुल 69 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त प्रधान उद्धारकर्ता आएगा। दानियल 9:25 69वें सप्ताह के बाद अभिषिक्त पुरुष उद्धारकर्ता काटा जाएगा, लेकिन खुद के लिए नहीं। दानियल 9:26 यह उसके स्थानापन मृत्यु के संदर्भ में है। मेलबलि और अनबलि का अंत करने के लिए उसे 70वें सप्ताह के मध्य में मरना था। दानियल 9:27 समय की भविष्यवाणियों को समझने की कुंजी बाइबल के इस सिद्धांत में निहित है कि भविष्यवाणी के समय में एक दिन ठीक ठीक सूर्य वर्ष के बराबर होता है, गिनती 14:34 और यहेजकेल 4:6 के अनुसार। इस दिन वर्ष के सिद्धांत के अनुसार 70 सप्ताह या 490 भविष्यवाणी के दिन वास्तव में 490 वर्षों को दर्शाते हैं। दानियल कहता है कि यह समय यरूशलेम को पुनः स्थापित करने के आदेश निकलने के बाद आरंभ होना था। दानियल 9:25 यहूदियों को पूर्ण स्वायत्तता देते हुए यह आदेश फारस का राजा अर्थशत्र के समय के 7वें वर्ष में जारी हुआ था। यह 457 ईसा पूर्व की पतझड़ में लागू हुआ था। एजरा 7:8-12-26 तथा 9:9 भविष्यवाणी के अनुसार 483 वर्ष 69 भविष्यवाणी के सप्ताह के आदेश के पश्चात उद्धारकर्ता राजकुमार आएगा। 457 ईसा पूर्व के पश्चात 483 वर्ष हमें 27 ईस्वी सन के पतझड़ तक लाते हैं, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ और उसकी सार्वजनिक सेवा का आरंभ हुआ। 457 ईसा पूर्व एवं 27 ईस्वी सन की तारीखों को स्वीकार करते हुए गलिसन आर्चर यह टिप्पणी करते हैं कि यह एक प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्णता में अति उल्लेखनीय सटीकता है। केवल परमेश्वर ही इतनी अद्भुत सटीकता के साथ अपने पुत्र के आने की भविष्यवाणी कर सकता था। यह सभी तर्कसंगत स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है। यर्दन में उसके बपतिस्मे के समय यीशु का पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया था एवं परमेश्वर द्वारा उद्धारकर्ता इब्रानी या ख्रिस्ट यूनानी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। दोनों का अर्थ अभिषेक किया हुआ है। लूका 3:21-22 प्रेरितों के काम 10:38 और यूहन्ना 1:41 यीशु की उद्घोषणा समय पूरा हो चुका मरकुस 1:15 समय की इस भविष्यवाणी की पूर्णता का संकेत देती है। 70वें सप्ताह के मध्य में 31 ईस्वी सन की वसंत ऋतु में मसीह के बपतिस्मे के ठीक 3.5 वर्ष पश्चात उद्धारकर्ता ने अपने प्राण देकर बलिदानों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसकी मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा मंदिर की सभी सेवाओं का दिव्य समाप्ति का संकेत देते हुए अलौकिक तरीके से ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। यह हम पाते हैं मत्ती 27:51 में। सभी भेंटों व बलिदानों ने उस सर्व पर्याप्त उद्धारकर्ता के बलिदान की ओर इशारा किया था। जब यीशु मसीह परमेश्वर का सच्चा मेमना हमारे पापों की फिरौती के रूप में कलवरी पर बलिदान किया गया, 1 पत्रस 1:19 प्ररूप रूप से मिल गया और छाया वास्तविकता में पिघल गई। संसारिक पवित्र स्थान की सेवाएं अब वास्तविक नहीं थी। फसह के त्योहार के दौरान भविष्यवाणी किए गए ठीक समय पर उसकी मृत्यु हो गई। सचमुच पौलुस ने कहा, मसीह हमारा फसह हमारे लिए बलिदान हुआ है, 1 कुरिन्थियों 5:7। यह आश्चर्यजनक अचूक समय की भविष्यवाणी मौलिक ऐतिहासिक सत्य के सबसे मजबूत प्रमाणों में से एक है कि यीशु मसीह ही संसार का लंबे समय से भविष्यवाणी किया गया उद्धारकर्ता है। उद्धारकर्ता जी उठता है। बाइबल ने न केवल उद्धारकर्ता की मृत्यु की भविष्यवाणी की बल्कि उसके पुनरुत्थान की भी भविष्यवाणी की। दाऊद ने भविष्यवाणी की थी कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई, प्रेरितों के काम 2:31। तुलना करें भजन संहिता 16:10 से। हालांकि मसीह ने दूसरों को मृतकों में से जीवित किया था, मरकुस 5:35-42, लूका 7:11-17 और यूहन्ना 11 में हम यह पाते हैं, उसके स्वयं के पुनरुत्थान ने दुनिया का उद्धारकर्ता होने के उसके दावे के पीछे की शक्ति का प्रदर्शन किया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यह यीशु मसीह का वचन है, यह यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है। हम पाते हैं इसे यूहन्ना 11:25-26 में। उसके पुनरुत्थान के पश्चात उसने घोषणा की, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ, मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं, प्रकाशित वाक्य 1:17-18। हाँ प्यारो भाइयों और बहनों, यीशु मसीह में मसीहा का भविष्यवाणी सटीकता से पूरा होता है और यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमारे लिए फिर से जी उठा। कि हम उस में विश्वास करके पापों से क्षमा पा सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं। यह समाचार हमारे लिए बेहद खुशखबरी समाचार है। आइए हम इसे ग्रहण करें और यीशु मसीह को अपनाएं और यीशु मसीह में अनंत जीवन पाएं और इस शुभ संदेश को दूसरों को भी बांटें। परमेश्वर आपकी मदद करे और परमेश्वर हम सबों को बहुताय से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस बहुमूल्य वचनों के लिए कि यीशु मसीह को तूने इस दुनिया में भेजा, सही समय में भेजा, हमारे पापों के लिए मरा और हमारे लिए फिर से जी उठा कि हम उसमें विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। हम सब तुझ में विश्वास करते हैं पिता, हम सबों को तेरे आत्मा के द्वारा चला और हम सबों को इस विश्वास के द्वारा तेरे अनुग्रह के द्वारा उद्धार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, सुना ग्रहण करे, आमीन।
पुकार मेरे ईश्वर, देख तू मुझको आंखों में ममता लेकर, तुझ तक पहुंचे पुकार मेरे ईश्वर, देख तू मुझको आंखों में ममता लेकर, दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे, विश्वास है तुम फेरे दयालु यीशु मेरे। डूब न जाऊं लहरों के नीचे, मुझको हर दम खींचे, डूब न जाऊं लहरों के नीचे, मौत मुझको हर दम खींचे, समझेगा मेरे तू आंसू की भाषा, सिर्फ है इतनी सी आशा, दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे, विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे, दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे, विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे। सागर का तू ही किनारा, एक तेरा ही तो है सहारा, जीवन सागर का तू ही किनारा, गलत राहों पे कदम न बहके, खुशबू बन के जीवन में के, दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे, विश्वास है तुम न फेरे आगे तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे दयालु यीशु मेरे दयालु यीशु मेरे दयालु यीशु मेरे हे यीशु तुझको मैंने दिल की गहरा मेरे यीशु तुझको मैं दिल की गहराई से पुकार।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio पोस्ट बॉक्स 1446 पुणे 411037 महाराष्ट्र भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।